نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا کتاب النکاح کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں. یہ ایسا چیپٹر ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں جو نکاح کے بہت علم کی کمی ہے نکاح کے معاملے میں، اور یہ وہ معاملہ ہے جو بھی ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بھی ہے اور ایک ایسی چیز بھی ہے جو روزمرہ کی چیز ہے. کسی کا نکاح ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، آپ کے اپنے گھر میں، تو یہ وہ چیزیں اسینشل پارٹ آف لائف ہے. آئے دن آپ شادیوں کے کارڈ آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس بارے میں لوگوں کا نالج جو ہے وہ کلوز ٹو زیرو ہے. شادی بیاہ کو آج کل ہم کچھ اور ہی سمجھ چکے ہیں، جبکہ ہمارا دین اس کو کیا کہتا ہے اور ہمارے دین میں اس کے بارے میں کیا ہمارے پاس احادیث ہیں، قرآن کا کیا حکم ہے، اس کا کم ہی لوگوں کو کچھ علم ہے. اور یہ بات بھی دیکھیں، شاید دوسرے مذاہب میں تو اس طرح سے نہیں ہو جتنی کہ ہمارے مذہب کے اندر آپ کو بتایا گیا نکاح کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ کو دی گئی بھی ہے. میرا نہیں خیال کسی بھی اور مذہب میں اس طرح سے اتنی زیادہ ڈیٹیل کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں. اور نکاح کو بھی دین کا حصہ قرار دیا جانا یہ ایک بہت اہم بات ہے. دوسرے مذاہب میں ان کے جو مذہبی رسومات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہی بس دین ہوتا ہے، اس کے علاوہ شادی بیاہ یہ لوگوں کے پرسنل معاملے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے مذہب میں شادی بیاہ بھی دین کا حصہ ہے. اور اس میں کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ دین سے کوئی تعلق اس کا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو شادی کا دور دور تک کوئی بھی شاید تعلق سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کوئی دین کے ساتھ ہے. تو اس لیے جب ہم کتاب النکاح پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ اب سے ہمارے جو یہاں سے انفارمیشن ملے گی، جو ہم یہاں سے پتہ چلے گا، انشاءاللہ اس کو ہم اپلائی کریں اور دوسرے لوگوں کو تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. چلیں، کتاب النکاح، نکاح کے مسائل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح کا جو پہلی حدیث ہے، نفیسہ شیخ آپ بتائیں گی کہ اس پہلی حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی ہے جو شادی کی طاقت نہ رکھتے ہوں. جی نفیسہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
جی، اس میں حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں انہیں تو نکاح کر لینا چاہیے، جو طاقت نہیں رکھتے شادی کی نہ چاہیے، کیونکہ یہ پھر جو دوسری خواہشات ہیں نفسانی جو ان کو روکتا ہے نا روزہ.
ٹھیک ہے، صحیح شاباش. یعنی اب آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کو کیا نصیحت ہے. آپ بتائیں گی شہناشا کہ نکاح کرنا پھر کیا فرض ہے، کیونکہ اس حدیث میں تو ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فرض قرار دے دیا ہو، یا کیا یہ فرض کے درجے پر آتا ہے نکاح؟
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، فرض کے درجے میں آتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا.
اچھا،
نکاح کرے.
اچھا، تو یعنی پھر چلیں آپ سنیں، صباحت آپ بتائیں گے اس کے بارے میں مزید.
جی، اس میں یہ کہ اگر کسی کو اطاعت ہو تو پھر یہ حکم واجب ہو جاتا ہے.
واجب ہو جاتا ہے حکم؟ اچھا،
فرض ہی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے.
اچھا، دیکھیں اس کے بارے میں
ذرا، اگر اطاعت ہو.
ہاں، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بندہ ऐसी अपनी कंडीशन समझता है कि अगर उसका वो निकाह नहीं करेगा तो वो किसी बुराई में पड़ जाएगा, किसी जिना में पड़ सकता है, किसी और बेहयाई के उसके अंदर पड़ सकता है, तो उसके लिए तो फर्ज ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं अपने बारे में हर एक की यानी एक कैपेसिटी या कह सकते हैं एक हर एक जो भी ख्वाहिश है वो डिफरेंट उसकी लेवल की हो सकती है, अगर ऐसा नहीं है तो जैसे यहां पे कहा गया, देखिए अगर फर्ज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो फर्ज है, यहाँ पे फरमाया जो ताकत ना रखता हो जो एक्सेप्शन कि जो लोग ताकत नहीं रखते, ताकत नहीं रखने का वो एक बात अलग है वो हम अभी करते हैं, लेकिन जो ताकत नहीं रखता उसके लिए एक वे आउट दिया गया कि वो रोजा रखे। इससे पता चला कि फर्ज हर हालत में फर्ज नहीं हो जाता, फर्ज उस हालत में है जब आपको अंदेशा हो कि आप बुराई में पड़ सकते हैं, तब अगर ऐसा नहीं है, आप देखें मिसाल के तौर पे किसी इंसान को कोई रगबत ही नहीं है औरतों से, कोई उसके अंदर यानी क्या इस तरह से उसको कहा जाए कि इतनी जिस्मानी ख्वाहिश ही नहीं है औरत की तरफ कि वो बीवी अगर लेकर आएगा तो उसके हकूक पूरे नहीं कर सकता। तो अब ऐसी सूरत के अंदर फिर यानी उस वजह से वो निकाह नहीं कर रहा तो उसके ऊपर फर्ज नहीं है फिर। हाँ एक पसंदीदा चीज है, एक वाजिब वाजिब के दर्जे पे आ जाता है मगर फर्ज नहीं होता। या कोई इंसान इस कदर उसके अंदर है कि उसके पास इतनी यानी नहीं है अभी ताकत के वो निकाह कर सके, यानी इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि उसके तो अपने लिए दाल रोटी पूरी नहीं होती, उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो दूसरे को, वो खुद डिपेंडेंट है, तो वो फिर उसके लिए भी फिर क्या है वो रोजे रखे। तो अब ये देखना चाहिए कि किस सूरत में रोजे रखे जाएंगे, कि किस सूरत में। तो ये जो सूरत आपको नजर आ रही है अगर निकाह हर एक के लिए फर्ज होता तो फिर बालिग होते ही फिर जो नहीं कर रहा फिर उसके ऊपर तो बड़ा गुनाह हो जाता है, क्योंकि फर्ज को छोड़ना तो गुनाह है। समझ आ गई? अब ये हम अगर सिर्फ राइट अवे कह देंगे ना ये फर्ज है सबके लिए, तो फिर ये वाली जो हदीस का ये हिस्सा है नौजवानों को जो नसीहत है इसकी तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो राइट अवे फिर यही बात है कि ठीक है हर एक के ऊपर फर्ज है जैसे मर्जी करे, ठीक है, तो इस चीज को जरूर समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोगों को समझ आ गई ये बात? बाकी लोगों को समझ आ गई तो फर्ज कब होगा वाजिब कब होगा ये समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शाबाश। अच्छा जी नाज़नीन आप बताएंगे यहाँ पे कि बाअता इसका मतलब क्या है। मन इस्तता मिनकुम अल बाअता फलयतज़वज।
ये
वालेकुम अस्सलाम।
आवाज आ रही है सर?
जी जी आ रही है बताइए।
आप क्या पूछ रही है? मनीषता मिनकुम
अलबाअता फलयतज़वज। तो बाअ क्या है? जो तुम में से इस्तात रखे बाअ की फलयतज़वज तो उसको चाहिए कि शादी कर ले। तो बाअ क्या चीज है?
जरूरत को पूरी कर सकता हूँ, मतलब
हाँ क्या मतलब?
बहुत रिच होने की भी नहीं जरूरत, अगर आप थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं और शादी कर सकते हैं और खिला सकते हैं अपनी बीवी को तो फिर कर ले।
अच्छा और भी कुछ है?
और तो
अच्छा तो ये इसमें भी देखें जहन में रख लें। एक तो जो इन्होंने बता दिया शाबाश, यानी जो अपने अपनी दाल रोटी अपने खा सकता है और एक और बंदे को खिला सकता है। अब उसके अंदर हम जिस तरह सोचते हैं कि नहीं जी अभी तो करियर बनाना है, अभी तो ये है वो है, ये सारी चीजें तो नहीं। जब अपनी रोजी पूरी हो सके और अपने साथ किसी और बंदे की पूरी कर सके तो फिर वो ये बा में आ गया। और दूसरी क्या चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि वो अपनी यानी जिस्मानी हकूक भी तो पूरे कर सकता हो, इतनी भी तो इस्तात हो उसकी, तो यानी शादी के लिए जो भी चीज जरूरी है। अब देखिए अब हमने तो आज बना लिया शादी के लिए जरूरी चीजें, तो ये भी है कि फ्रिज भी दिया जाए और ओवन भी दिया जाए और माइक्रोवेव भी हो और इतने तोले सोना भी हो और गाड़ी भी हो और ये भी हो, तो फिर ये है तो, और फिर उसके बाद लड़के का है कि उसको अपना घर हो, सेटल्ड हो, ये हो वो हो। जबकि इस्लाम कहता है कि जो भी शादी के लिए जरूरी चीजें, तो जरूरी की भी हमारी डेफिनेशन अलग है और इस्लाम की डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर पेरेंट्स कर सकते हैं तो पेरेंट्स करते हैं, अगर वो करने को तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात जी, फरजाना चौधरी आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए हदीस में, अगर आप हदीस को खोलें तो इसमें है कि हजरत अलकमा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत उस्मान है, और फिर चलते चलते आगे अब्दुर्रहमान की बात आने शुरू गई, अबू अब्दुर्रहमान की। तो ये क्या चक्कर है?
जी,
वालेकुम अस्सलाम।
यहाँ पे सहाबा के आपस में बातचीत हो रही है ना। पहले
अच्छा,
तो जो
तो
है
ये कौन कौन सहाबा हैं जो
ये
बातचीत कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है, यानी कौन कौन?
बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद हैं
अच्छा, और किसके साथ बात हो रही
जी,
है,
और
कितने लोग हैं, ये
कि
मैं
वो
पूछ
जा
रहा
रहे है कि वो जा रहे हैं, रास्ते में उनको मिलते हैं उस्मान रजी अल्लाह उनको मिलते हैं
हूँ।
और पूछते हैं कि साथ में अब्दुल रहमान भी हैं जो कि सहाबी हैं।
अच्छा, तो यानी अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू अब्दुर्रहमान हैं, ये तीन हैं, और अलकमा।
देख लेते हैं जी, अधीर से कहते हैं कि मैं जा रहा था जी, ये जा रहे थे साथ अब्दुल्ला बिन मसूद के जी, और मकाम मीना में हजरत उस्मान रास्ते में मिलते हैं इनको। ये दोनों जा रहे होते हैं और उस्मान मिलते हैं रास्ते में इनको।
और तो यानी दो हैं ये, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कितने लोग हैं,
ये टोटल तीन है ना, टोटल तीन है
नाम
जिसमें
बताएंगी
अब्दुल्ला
तीनों
बिन,
के,
जी सॉरी
नाम बताएंगी तीनों के?
जी, अब्दुल्ला बिन मसूद है और साथ अब्दुल रहमान जो है वो है,
और
और इसके फिर आगे भी आ रहा है कि अलग जो हजरत उस्मान है।
अच्छा ठीक है, अब इसको आप गौर से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे, अच्छा नहीं मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बाद में पूछती हूँ, यहाँ पे हजरत उस्मान है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद है, ठीक है, और ये दोनों जा रहे हैं, हजरत उस्मान हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाते हैं ए अबू अबू अब्दुर्रहमान, क्योंकि अबू अब्दुर्रहमान कौन है, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो अब्दुल्ला बिन मसूद की ही कुनियत है। ठीक है, ये बात जहन में रखिए, क्योंकि वरना आपको हदीस में लॉस्ट हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा वो अभी दो जा रहे हैं, वो क्या तीसरे से बात कर रहे हैं, फिर वो उनको कह रहे हैं, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद खुद कह रहे हैं उनको जरूरत महसूस नहीं करते इसलिए उन्होंने इशारा किया, फिर एक तीसरे हैं अलकमा, अलकमा को बुलाया गया है, अलकमा को बात की गई है उसके बाद उनसे, ये थर्ड है। ठीक है, और अलकमा कौन है, सहाबी हैं, ताबेई हैं, कौन है, यहाँ पे लिखे पहले टॉप पे जी, ताबेई हैं, ठीक है, शाबाश। तो ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को कि किधर को जा रही है हदीस, वरना तो आप हदीस कहीं है, हम कहीं और सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगी तहसीन के, कुरान से हमें पता चलता है कि निकाह करना जरूरी है, निकाह की जिसके अंदर तरगीब बताई गई हो या निकाह का हुक्म दिया गया। वालेकुम अस्सलाम।
कुराने करीम भी कौन से ऐसे का पता चलता है? सॉरी, मैंने नोट डाउन नहीं की थी ये वाली
अच्छा जी, आप मुझे बताएंगी, नाहिद से देखिए आप बताएंगी कि कुरान करीम की कौन सी आयत से पता चलता है। चलिए मरियम अथर आप बताएंगे। मरियम जी, कुलसुम आप बताएंगी? जी कुलसुम, मैं यहाँ पे नहीं लिखे, पैल टॉक पे नहीं लिखे कुछ भी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी।
वो जैसे ये आई थिंक ये तो हदीस है ना, चाल निकाह मैंने सुनना थी कुछ ऐसे है।
नहीं, कुराने करीम में कहीं आता है कि निकाह करो? कोई हुक्म आता है?
होगा तो सही पर मेरे नहीं जेन में ना, लेकिन
अच्छा,
होगा
आप लोगों
जरूर।
से मैं टेस्ट में ये पूछूंगी अब ये बातें। अच्छा जी, जब किताब निकाह का टेस्ट आएगा ना तो ऐसे सवाल होंगे। अच्छा जी, राहत आप बताइए।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सूरह
अस्सलाम।
निसा में है आयत नंबर 6 और सूरह नूर में है आयत नंबर 38 और हदीस में भी है मुस्लिम बुखारी में कि मतलब नौजवानों को कहा गया तुम नकाह की ताकत रखते हो तो नकाह कर लो, क्या
अच्छा
अपनी भी नकाह ही नीचे करो क्या अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ये हदीस में है। और दो आयतें जो पहले मैंने बताई
शाबाश,
सूरह नूर
सूरह
के
नूर
38
में है,
और सूरह
सूरह नूर
नूर आयत
में,
नंबर 8 है।
नहीं सूरह नूर में, शाबाश, सूरह नूर में आयत नंबर 32 है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने साफ वाजे हुक्म दिया है कि जो भी तुम में से ऐसा है जो कि जिसको कहा गया है अयिम, अयिम जो भी तुम में है, अयिम का मतलब है जिसके पास स्पाउस नहीं है, जिसका पेयर नहीं है, चाहे वो बेवा है, चाहे वो तलाक याफ्ता है, चाहे वो रंडवा है कोई आदमी, चाहे वो कंवारा है, तो फरमाया अय्यम का निकाह कर दो। ये क्या है कि अय्यम का निकाह कर दो, अगर कोई यानी सोसाइटी का ये काम है कि वो ऐसे लोगों के निकाह के अंदर मुआवनत करें, और अगर वो फकीर है तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर देगा। सबसे ज्यादा ये डर होता है ना कि अल्लाह खाएंगे कहां से, क्या होगा क्या, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें। तो ये हमें दलील कुरान से भी मिलती है, उसका हमें लिखना चाहिए अपने पास कि कुरान करीम से क्या दलील है और हदीस में हमें क्या दलील मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, नहीं सूरह मायदा की नहीं है। अच्छा जी इशरत, आप बताएंगी कि अगली ये जो हदीस है 885 जिसमें सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कम समझा, इससे हमें क्या पता चलता है?
इससे ये पता चलता है कि अगर जो रसूल पाक सल्लम की तरीके पे अमल नहीं करा तो वो हमें से नहीं है। रसूल पाक सल्लम का ये फरमान है ना कि आपके तरीके पे जो नहीं चला।
ठीक है, और क्या पता चलता है?
कि अगर आपने कोई चीज को पसंद की अपने लिए तो हमें भी, और हमें कहा है कि करना अच्छा है तो फिर हमें अमल करना चाहिए जरूरी।
ठीक है, शाबाश। अच्छा ये एक नंबर है 6136686, ये कौन है? टॉक पे अपना लिखें या मैं आपकी लाइन ओपन करती हूँ। 613686, और अपना नाम बोलेंगे। 613 जी, नरगिस। नरगिस आप बताएंगी और क्या पता चलता है इस हदीस से?
इस हदीस से ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है जिसने मेरे तरीके से यानी कि मुंह मोड़ा।
हाँ, वो तो उन्होंने बता दिया, और क्या पता चलता है? वो तो इशरत ने बता दिया, और आपको क्या पता चलता है? बहुत बड़ी वाजे बात है एक सामने इसमें जी।
यानी कि उन्होंने कहा था ना कि हम औरतों से, सहाबा कराम ने कहा था कि हम औरतों से जुदाई कर लेंगे, निकाह नहीं करेंगे।
हाँ वो तो सही है, वो तो सही है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो तुम सबसे ज्यादा डरने वाला तो अल्लाह सुब्हान तआला से मैं हूँ।
नहीं नहीं, वो तो वो बात हो गई है, वो बात हो गई है उसके अलावा। अच्छा ठीक है, अब 732895 ये कौन है? वालेकुम मेरम, आप बताएंगी कि क्या पता चलता है आपको इस हदीस से?
कोई नहीं, नहीं करना
जितना कहा वो करना। एग्जैक्टली, यानी आपको बताया गया कि आपने बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग ना इतनी जल्दी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि अगर इबादत है तो उसके अंदर भी इतनी एक्सट्रीम हो जाएगी कि नहीं जब हमने तो ये इबादत के अंदर ऐसी है कि हम तो बस रात को बस हमने सोना ही नहीं है और हमने तो ऐसे करना है। या अगर निकाह है तो उसको ये बुरा समझना शुरू कर देना कि शादी करना क्या, ये तो फिर इंसान अपना इसी में नहीं, बच्चों और बीवी और इसमें झंझट में पड़ जाएगा। پھر تو ہم عبادت نہیں صحیح طریقے سے کر سکیں گے. تو یہ ایکسٹریم راستے اختیار کرنا اسلام میں منع ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی سنت ہے کہ نکاح بھی کیا اور رات کو عبادت بھی کی اور سوئے بھی, اور دیکھیں روزہ بھی رکھا اور بغیر روزے کے بھی دن گزارے. اب جب ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے, ہم زیادہ دیر اس کو سسٹین نہیں کر پاتے, جوش میں آ کے ایکسٹریم پہ چلے گئے اس کے بعد سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. دوسری بات یہ کہ جب ہم ایسی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو یہ بھی ہم نے سنت کے خلاف کیا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا چیز کے اندر ہمارے لیے بہتری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. اب اسوہ حسنہ سے جب بھی آپ ہٹیں گے, چاہے آپ جس کو کہیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جائیں اور اس میں اتنے زیادہ آگے چلے جائیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے ان سے آگے. آپ جب بھی یہ سوچیں کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں تو وہ بڑھنا نہیں ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی, چاہے آپ خود اس کو کتنا بھی اپریشیٹیبل سمجھیں کہ بہت ہی میری قابل تعریف میں نے چیز کی ہے, وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اچھی یہ جی مہرین آپ بتائیں کہ تبتل کیا ہے. تبتل جو اگلی حدیث میں کہ حضرت عثمان بن مزون نے
سوچنا یا ارادہ کرنا کہ وہ عورتوں سے ہمیشہ کے لیے یعنی کہ الگ ہو جانا, کہ ان کے کبھی بھی نہ جانا.
شاباش, اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ, یعنی اس کو ایک تقویٰ کا اپنے آپ زہد کا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سننا. ایک بندہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے عورتوں سے کنارے, کیونکہ اس کے اندر بالکل ہی عورت کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے, کوئی خواہش نہیں, وہ یعنی خسی ہے, تو اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو زہد اور تقویٰ سمجھنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ ہم اس سے بڑے نیک ہیں یا بس مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ نہیں میں نے کرنا, یہ چیز اسلام میں منع ہے. آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ کام کیا, آپ ان کے دیکھتے ہیں ننز, ان کے جو پریسٹ ہیں جو پادری ہیں ان کے, انہوں نے یہ کام کیا کہ عورت سے بالکل الگ اپنے آپ کو کر لیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایسی عورتیں, چاہے عورتیں ہیں, انہوں نے مردوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیا, وہ ننز بن گئی. اب ایک اللہ تعالیٰ نے جو خواہش اندر رکھی ہے وہ تو ہے, اس کے بعد آپ نے ان کے, اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو ان کے کارناموں کی, تو بہت لمبی لمبی داستانیں ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ان کے جو تہ خانے ہوتے تھے وہاں سے پوری پورے قبریں نکلی ایسے بچوں کی جن کو بس دفنا دیا گیا زندہ ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے جب انہوں نے اس طرح کے کام کر لیے اور وہ بچے پیدا ہوئے تو پھر کیا ان کا کرتے, ان کو دفنا دیا بھائی, بیسمنٹس میں قبریں بنا دی ان کی, کیونکہ انسان کی خواہش ہے لیکن وہ اب اپنی خواہش کو جائز طریقے سے تو پورا کرنے کا راستہ ہی بند کر دیا انہوں نے, اور اب ناجائز ہی طریقہ رہ گیا تھا. اور ان کی بہت سارے جو ان کے سکینڈلز کئی آتے رہتے ہیں وہ اسی لیے کہ نیچر یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھا ہے کہ یہ مرد کو عورت کی ضرورت اور عورت کو مرد کی ضرورت, یہ فطرت میں انسان کی, جب انسان فطرت کے راستے سے ہٹتا ہے تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں. ان کا جو یہ جو کرنا تھا یہ ان کی خود ہی ایجاد تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا. اگلا جو آ رہا ہے ٹاپک نکاح متاع کا, یہ اتنا اہم ٹاپک ہے اور آپ کو اتنی اس حدیث کو یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے معاشروں کے اندر بھی ہوتی ہیں. سمیع اختر آپ بتائیں گی نکاح متاع کیا ہوتا ہے؟
نکاح متاع تھوڑا سے عرصے کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت سے نکاح کر لینا, اپنی ضرورت پوری کر کے تو پھر اس کو چھوڑ دینا.
ٹھیک ہے,
زندگی گزارنے کے لیے نہیں.
شاباش, اچھا آپ بتائیں گی شبنم خان کے نکاح متاع جو ہے اس میں بھی کیا وہی شرائط ہیں جو دوسرے نکاح کی ہوتی ہیں, یا اس میں کچھ یعنی کیا اس کی شرائط کیا ہے؟
وعلیکم السلام. جی اس میں انہوں نے جب آپ کے دور میں جب آپ نے صحابہ کرام سے اجازت دی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں ایک جوڑے کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس پہ ہم نکاح کر سکتے تھے ایک معین مدت کے لیے نا.
ٹھیک ہے, مگر کیا شرائط تھی, اس کی شرائط کیا تھی؟ کیا وہی نکاح والی شرائط ہیں جو دوسرے نکاح کی ہوتی, یا اس کی کوئی
اسپیشل؟ نہیں, اس کی وہ والی شرائط نہیں ہوگی.
اچھا अच्छा अब आप सुनिएगा फिर मैं जी नाहिद सिद्दीकी, आप बताएंगी कि इनकी क्या इसकी क्या शरायत होंगी जी, इसकी क्या शरायत होंगी? वालेकुम अस्सलाम
हेलो
वरहमतुल्लाह जी बताइए जी
सलामुलेकुम
बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी।
इसका ये तो इसमें जो है रेगुलर पूरा निकाह की तरह ही था, बल्कि इसमें होता था कि बस सिर्फ कपड़ा या कोई भी चीज दे देते मेहर के तौर पर, अब बस निकाह कर लेते, वक्ती तौर पर निकाह करते मुद्दत तक, उसके बाद फिर उनके पास कोई हकूक नहीं रहते थे।
अच्छा, और नहीं मेरा सवाल ये कि जो निकाह की शरायत है जैसे हक मेहर है या बेकबूल है या वली का होना है, वो इसके अंदर होता है कि नहीं?
कोई शरायत में नहीं होती, कोई शरायत नहीं होती।
अच्छा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसकी भी वही शरायत हैं जो के आम निकाह की होती है। ठीक है, ये अपने पास करेक्ट कर लें। इसमें भी हक महर, इजाबो कबूल, और इसमें भी यानी वली की रजामंदी, ये सब चीजें। फर्क क्या है? सिर्फ देखें, आम निकाह जब हम करते हैं, जो आज हमारे वक्त में भी हो रहा है, उसमें क्या होता है कि हमने निकाह किया, शादी किया, निकाह निभाना है, जिंदगी भर के लिए निभाने का एक सोचा होता है, बाद की बातें वो तो जो भी हो, लेकिन एक ऐसा नहीं होता कि शुरू से ही एक फिक्स टाइम के लिए किया जाए, कि फिक्स टाइम कर दिया जाए कि एक मंथ का है, एक दिन का है, एक रात का है, इस तरह से नहीं होता। जबकि निकाह मुता में पहले से जैसे एक एग्रीमेंट होता है ना, कि दिस के एक एग्रीमेंट नहीं, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसलन आप एक रेंट पे ले रहे हैं कोई अपार्टमेंट, तो आप कहते हैं 1 साल के लिए ये मेरी लीज है, राइट? तो ये एक तरह से इसी तरह है कि 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और उसके अंदर वो सारी चीजें हैं, हक मेहर भी है, वली की रजामंदी, जाब कबूल, सब चीजें। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके बारे में आज के वक्त में क्या है? ये राफिया बेगम, आपसे हो गया सवाल या नहीं? राफिया, आप बताएंगी कि आज के वक्त में क्या ये जायज है इस तरह से करना?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु।
वालेकुम।
आज के उसमें ये मुता निकाह नहीं कर सकते, ये जायज नहीं है आज।
शाबाश।
ये उस वक्त था, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये कुरान में भी इसके बारे में आया कि अब ये नहीं कर सकते
जी। अब ये कुरान में तो नहीं है, यहाँ पे ये है कि जब जायज था तो उस वक्त उन्होंने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने, क्या ईमान वालों अपने ऊपर इन पाकीज़ा चीजों को हराम ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दी है। ये उन्होंने इसकी, ये एक अमूमी आयत है कि वो कोई भी चीज जैसे औरत है, हलाल है, तो उसको हराम क्यों कर रहे, ये उस वक्त की बात थी। लेकिन उसके बाद ये, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही है, उसके बाद ये हराम कर दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हलाल हुआ एक दफा, और फिर उसके बाद फिर हराम कर दिया गया, और क़यामत तक के लिए ये हराम कर दिया गया। कौन सी आयत लेकर अब भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसे, मैंने सवाल नहीं किया, 714 714582 से कौन है? अभी भी आकू जी, रशीदा आप बताएंगी कि के कौन, किस आयत से लेकर आज इसको कहा जाता है कि नहीं ये सही है? ये भी है। अच्छा, फिर मैं आपसे फिर से पूछती हूँ जी मरियम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बताएंगी कौन सी आयत को लेकर कहा जाता है? जी सही है, उसमें क्या है, किस चीज से लेके कहा जाता है? शाबाश। ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, बहुत अहम है कि आज भी एक हमारे यहाँ तबका है शिया हज़रात जो कि इसको अभी भी जायज़ समझते हैं, और बाज लोग ये पांचवें पारे की जो पहली आयत है ना, उससे उसमें उसमें स्तंभता आता है कि जो जिनका जिनसे तुमने फायदा उठाया है तो उनको फिर मेहर अदा कर दो। उस वो सोचते हैं कि स्तंभता है तो यानी निकाह मुता, जिनसे निकाह मुता किया उनको हक मेहर दे दो। तो एक तो वो लोग भी आज तक इसको जायज समझते हैं, जबकि हमारे पास वाज़े हदीस है यहाँ पे 889 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करते थे, मगर वो जैसे एक वक्त में हलाल हुआ था तो वो कहते हैं एक वक्त में हलाल तो हुआ था और वो हराम वाली आयत को नहीं लेते। दूसरी बात ये है जो जिसके हद से मैं ज्यादा, वो तो एक अलग बात है, वो क्या सोचते हैं हम उसको नहीं डिस्कस करते, मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोस्टिट्यूशन है ये क्यों चलती है और किस तरह चलती है और वो कैसे इसको कहती हैं कि हम सही कर रहे हैं। वो कहते हैं हम निकाह मुता कर रहे हैं, एक रात का निकाह हमने कर दिया, हक महर है तो हक महर का क्या है, वो तो उन्होंने जो हमें कीमत दे दी, उसके अलावा इजाबो कबूल क्या है, तो हमारे जो उनके वो होते हैं जो उनसे ये धंधा करा रहे होते हैं वो तो भाई उनको कबूल ही है और इसकी भी रजामंदी है। तो ये तो हो गया, एक रात के लिए हमारे पास गुजारे और चने। तो यानी इस चीज को मुसलमान में जब ये जो सारे ये गंदगी है जिस मुल्क में भी जहां पे भी ये होती है तो वो किस तरह से को लिजिटिमेट करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, जबकि हमें यह पता चलता है कि उस वक्त एक जरूरत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो जायज भी किया था ना, वो एक जरूरत के तहत किया था, ये बात समझने की। और वो ये कि काफी दिन तक लोग जिहाद के पर चले जाते थे और वहां पे उनकी बीवियां साथ नहीं होती थी, और वहां पे जब बीवियां नहीं साथ होती थी तो फिर वो अपनी जरूरत कैसे पूरी करें। आप खुद उनके उनके आज भी आप अरबों के मिजाज और उनके जो जो ताकत है उनकी, उसको आप समझते हैं कि चार शादियां करके वो फिर शायद उनके लिए कोई वो बेहतर महसूस करते हैं। तो यानी उस वक्त अगर वो जिहाद के लिए चले जाते और उनके साथ बीवियां नहीं होती थी तो ये एक उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसे के लिए इसको जायज किया था, उसके बाद फिर नाजायज हो गया, उसके बाद फिर जायज किया और उसके बाद हमेशा के लिए हराम कर दिया। तो अब ऐसी कोई वो भी नहीं है कि लोगों को ऐसी जरूरत हो कि कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे ऐसा, अगर कहीं और जगह जा रहे हैं तो वहां पे भी प्रॉपर निकाह करें और प्रॉपर निकाह करके रहें, निकाह मुता फिर जायज नहीं हो जाता। तो यहां से हमें जब पता चलता है तो हम इस बात को जहन में रखें। और दूसरी, हमें कहां रिवायत मिलती है कोई हदीस में जिसमें साफ वाज़े तौर पे कहा गया हो कि निकाह मुता नाजायज है। ये किसकी बारी नहीं आई है, किसी बारी नहीं आई है, राजिया नहीं आई आज, किससे अभी तक जी, अच्छा यास्मीन इकबाल जी, आप बताएंगी कि किधर से हमें पता चलता है कि कौन सी कहां पे और हदीस है जिससे हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुमानियत की हो, क्यामत तक के लिए फरमाया
जी।
अच्छा चले, कोई मसला नहीं, कोई
मसला,
अच्छा नहीं कोई बात नहीं है, अल्लाह सफर खैरियत का करें। अच्छा ये मुस्लिम में रिवायत है, ठीक है, याद रखें ये रिवायत एक और मुस्लिम में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कयामत तक के लिए मैं अल्लाह ने इसको हराम कर दिया, ठीक है, जिसने ऐसा कोई निकाह किया वो उसको छोड़ दे और जो तुम इनको हक दे चुके यानी मेहर दे चुके हो वो वापिस नहीं लोगे। तो इसमें जब आ गया क्यामत तक के लिए तो अब हम कैसे इसको करेंगे कि नहीं ये ये जायज है, तो यानी खुल्लम खुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की खुल्लम खुल्ला एक खिलाफ वर्जी है ये। तो इसलिए इस चीज को समझना चाहिए कि निकाह मुता जिसमें थोड़ा फायदा देके थोड़ी देर के लिए फायदा उठाया जाए, थोड़ा सा इंसान को कुछ मिल जाता है, मुता से है ना, जैसे मताउल हयात दुनिया, तो ये इस तरह से यानी थोड़ी सी एक उसके फायदे के लिए, थोड़ा देर के फायदे का के लिए निकाह करना, याद रखिएगा ये हमेशा तक के लिए हराम है। اور اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو ادھر ادھر پھیر کے اور ان کا مطلب کر کے اور پھر یہ کر لینا کہ نہیں یہ جائز ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. اچھا چلیں, اب کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ ٹائم باقی کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.